جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل میں نے ایک حدیث بھیجی تھی گروپ پہ, آئی ہوپ کہ آپ سب نے پڑھی ہوگی. وہ حدیث جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا شبہ عمل کا دارومدار نیت پر ہے, اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے, اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی یا جس کی اس نے نیت کی. تو یہ حدیث ہے ماشاءاللہ, اور اس میں سے جو بڑا مشہور پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ اوبیسلی ایک جملہ تو بہت چھوٹا سا, اور یہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ آپ ایک جملہ بولتے تھے اور آج اس جملے کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء اکرام جو پوری کی پوری کتابیں لکھتے ہیں. تو یہ جو تھا یہ ہمارے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ ان کا کلام میں اتنے مطلب اتنا کوہیرنٹ اور اتنا زبردست کلام تھا. بہرحال یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے ان اے سینس کہ اس کو تھوڑا سا مس یوز بھی کیا جاتا ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ اس میں کلیئر ہے کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں, جو بھی آپ کے اعمال ہیں, وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی حلال کام کر رہے ہیں تو صرف آپ کے نیت کی وجہ سے وہ کام ایک نارمل کام ہو سکتا ہے یا اس کام کا آپ کو اجر مل سکتا ہے. جیسے کہ لیٹس سپوز آپ کھانا کھاتے ہیں یا روزے میں آپ سحری کرتے ہیں, تو اب آپ کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حلال کام ہے, اور اب آپ کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس لیے سحری کروں کہ مجھے بھوک نہ لگے, میرا روزہ اچھا گزرے. تو ٹھیک ہے, آپ کا روزہ اچھا گزرے گا, آپ کو بھوک نہیں لگے گی, لیکن اس کا آپ کو کچھ اجر نہیں ملنے والا, آپ کی زندگی میں وہ برکت نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے, تسحروا فإن فی سحور برکۃ, کہ سحور کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ آیت ہے تو آبویسلی یہ سوری یہ حدیث ہے تو آبویسلی آپ کو اس کا اسی عمل کا آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ایسی لیٹس سپوز کوئی بندہ شاور لینے جاتا ہے, اب اس کے شاور میں یہ ہے کہ صرف وہ صاف ہو جائے, اس کی یہ نیت ہے, تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ امپیورٹی میں تھا اور اب وہ غسل کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کا اس غسل کا بھی انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. ایسے ہی دوسرے حلال کام ہیں, ٹھیک, جیسے کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے, اب نارملی کھاتے پیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں آئے تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خود کہ کھاؤ پیو, جو میں نے تمہیں حلال چیزیں دی ان میں سے کھاؤ پیو, تو آپ اللہ کی ایک آیت پہ عمل کر رہے ہیں, ٹھیک, تو آپ کی صرف انٹینشن سے یہ چیز چینج ہو جاتی ہے کہ اس کا آپ کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اس حدیث کے بارے میں امام شافی نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے, اسے 70 فقہی مسائل جو ہے وہ نکلتے ہیں. 70, امام احمد نے فرمایا کہ 3 احادیث کے ارد گرد سارا علم گھومتا ہے, سارا آپ کا 3 ہے, یعنی ایک تہائی علم ہے یہ حدیث, اور باقی کی جو دو احادیث ہیں اس میں ایک تہائی علم میں, وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ تھی اس کی مین چیز. اب اس کا ہم تھوڑا کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ کوئی صحابی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے مکہ سے مدینہ, کیونکہ اس ٹائم پر ہجرت مسلمانوں پر فرض ہو چکی تھی, اور وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کا نام تھا ام القیس. اس عورت نے یہ بولا کہ میں تو ہجرت کر کے جا رہی ہوں, مجھے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر تم بھی ہجرت کرو. تو پھر انہوں نے اس عورت کے بولنے پہ ہجرت کی. تو ان کا نام نہیں پتا وہ کون تھے, لیکن ان کو مہاجر ام القیس کے نام سے اس کے بعد پکارا جاتا تھا. اور جب ہمارے نبی کو اس بات کا پتہ چلا اس وقت انہوں نے حدیث بیان فرمائی, اور اس طرح انہوں نے ایک بڑا زبردست ہمیں چیز بھی سکھا دی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال نیتوں پر جج کیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں دو زبردست مثالیں بھی دے دیں, جن میں سے ایک اچھی نیت کی مثال تھی کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ اچھی نیت تھی, اور دوسری جو تھی وہ بری نیت کی بھی مثال تھی کہ دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت. तो इसमें इखलास का हमें पता चल रहा है कि इखलास कितना ज़रूरी है आपके किसी भी अमल के लिए, और ये आपके हर अमल पे, जो भी अमल आपका दीन से रिलेटेड उसके हर अमल पे ये लागू होता है। और इसी के आगे डिटेल में दूसरी हदीस है जो कि काफ़ी लंबी है, और वह हदीस ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले एक आदमी का केस पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, और वो आदमी शहीद होगा, उसको लाया जाएगा अल्लाह सुभान व तआला के सामने, और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, उसको पहले उसको अपने इनामात गिनवाएंगे, वो उन इनामात को एक्नॉलेज करेगा, और फिर अल्लाह ताला उसको पूछेंगे कि तूने फिर इन इनामात को कहाँ इस्तेमाल किया, क्या किया इनके साथ। वो बोलेगा अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ता रहा यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू झूठ बोलता है, तू इसलिए लड़ा था कि लोग तुझे बहादुर सिपाही बोले, और वो तुझे लोगों ने बोला, ठीक है, यानी तुझे जो तूने किया उसका दुनिया में, दुनिया के लिए तेरी नीयत थी, और दुनिया में तुझे उसका मिल गया जो तुझे जो तू चाहता था, तो उसको घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक आदमी को लाया जाएगा जिसने इलम हासिल किया होगा और लोगों को सिखाया होगा और वो कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह ताला उसको अपने इनामात गिनवाएंगे, फिर उससे यही सवाल करेंगे कि क्या किया मेरे इनामात के साथ। वो बोलेगा कि अल्लाह मैंने इलम हासिल किया, दूसरों को सिखाया, और मैंने कुरान पढ़ा तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए इलम सीखा और सिखाया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, और तूने इसलिए कुरान सीखा और पढ़ा ताकि लोग तुझे कारी बोलें, और लोगों ने ये तुझे बोला तो आलिम भी कहलाया, स्कॉलर कहलाया और रिसाइटर भी कहलाया, तो अब तुझे दुनिया में मिल चुका, उसको भी घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक तीसरे आदमी को लाया जाएगा जो, यानी एक और आदमी को लाया जाएगा जो जिसके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत अल्लाह ताला ने दी होगी, अल्लाह ताला उसको अपने इनामात गिनवाएंगे, वो भी एक्नॉलेज करेगा, एडमिट करेगा, और फिर अल्लाह ताला उसको पूछेंगे कि तूने मेरे इन इनामात के साथ क्या किया। वो ये बोलेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में खर्च किया तेरी खुशनुदी के लिए, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी बोलें, और तुझे सखी बोला गया, तो अब अल्लाह ताला ऑर्डर करेंगे कि इसको भी घसीटो और जहन्नम में फेंक दो, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि तीन बेहतरीन अमाल हैं, एक शहादत अल्लाह की राह में लड़के शहीद होना, एक कुरान सीखना और दूसरों को सिखाना, और एक अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, सखावत करना। तीन बेहतरीन अमाल हैं और इनको करने वालों को जहन्नम में फेंका जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी, अल्लाह उनमें इखलास नहीं था, उन्होंने जो किया रियाकारी से किया, लोगों को दिखाने के लिए किया। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर तीन बेहतरीन अमाल का ये हो रहा है सिर्फ नीयत गलत होने की वजह से, तो दूसरे अमाल के साथ क्या होगा। जैसे हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं और हमारे दिन में ये होता है कि कोई हमें देख रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और सजदा लंबा करते हैं या कुछ भी ऐसा रियाकारी, शो ऑफ, ठीक है। और हमें ये भी सोचना चाहिए साथ में कि लेट्स सपोज आजकल हम महफिल मिलाद मना रहे हैं, महफिलें करवा रहे हैं, लेट्स सपोज आजकल वो मौसम है, वो सीज़न है, तो आप सोचें कि इतने बेहतरीन अमल जो हैं, जो अल्लाह ताला के पसंदीदा अमल हैं, वो अगर गलत नीयत के साथ किए जाएं तो क्या हो रहा है। और कोई और अमल जिसकी बेस भी ना हो और हम उसको भी गलत नीयत से करते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये एक पॉइंट है जिस पे हमें सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो है एक और जो लास्ट में मैं बिल्कुल बात करूंगा वो ये है कि जब हम बात करते हैं किसी अमल की और उसकी एक्सेप्टेंस की कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, तो उसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं या दो कंडीशंस हैं, जो पूरी हों तो वो कबूल होता है। पहली कंडीशन है नीयत, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अब आपने देख लिया, ठीक है। और दूसरी जो उसमें कंडीशन है वो उस अमल का अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक होना, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच नहीं करती तो अमल रद्द हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट्स सपोज आप नमाज पढ़ने गए, आप नमाज बेहतरीन पढ़ रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर और आपके जहन के अंदर आपकी नीयत है किसी को दिखाने की, अल्लाह की खुशनुदी नहीं है आप, तो आपकी वो नमाज रद्द हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं उस नमाज का। अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी जाता है मगरिब पढ़ने और वो 3 की जगह, उसकी नीयत बेहतरीन है, नीयत उसकी बिल्कुल अल्लाह की खुशनुदी है। अब वो ये बोलता है कि मैं 3 रखते हैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों ना 4 पढ़ लूँ मगरिब की, या अगर फजर पढ़ने गया तो वो 2 की जगह क्यों ना मैं 4 पढ़ लूँ, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ना, कुछ कम तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी उसका अमल रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसका अमल, उसकी नीयत बेशक बेहतरीन थी लेकिन उसका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं था। तो इसमें से ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें। अब ज़ाहिर है मैंने इस हदीस के साथ माशाल्लाह जितनी खूबसूरत है और जो इसके अंदर से जो जो चीज़ें निकल सकती हैं, जो जो सबक निकल सकते हैं, मैंने आपको सारे अभी नहीं बताए, सारे ना मुझे पता है ना मैं इसके साथ इंसाफ कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट अगर आपने जो टेक होम पॉइंट है वो यही है कि कोई भी अमल जिसके एक्सेप्टेंस के लिए 2 कंडीशंस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कॉलर्स बोलते हैं, पहली कंडीशन आपकी नीयत की दुरुस्तगी। इसलिए हमेशा कोई भी अमल करने से पहले और उस अमल के दौरान भी, क्योंकि आपकी नीयत अमल के दौरान भी बदल सकती है, नीयत करने से, अमल शुरू करने से पहले और अमल शुरू करने के दौरान भी अपनी नीयत को बार बार चेक करते रहें, बार बार चेक करते रहें। उलमा यहाँ तक बोलते हैं कि दिन में 40 दफ़ा अपनी नीयत को देखो, शायद इससे ज़्यादा दफ़ा चेक करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत को बार बार देखते रहें कि हमारा इस काम में नीयत क्या है, ठीक है। तो अपनी नीयतों को बार बार देखते रहें, और दूसरी चीज़ कि अपने अमाल को सुन्नत के मुताबिक करें। तो इसके साथ ही मैं फिर इसको एंड करता हूँ, और ये वैसे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं फिर से एम्फसाइज कर दूँ एंड से पहले, कि आजकल हम कुछ ऐसे काम करते हैं, हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज़ है कि हम कुछ ऐसे काम करते हैं और फिर बोलते हैं इसमें हर्जी क्या है, कि ये काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन इसके पीछे आप मेरी नीयत देखें ना। तो ऑब्वियसली आपने पहला पार्ट तो समझ लिया कि नीयत इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन आपने दूसरा पार्ट नहीं समझा कि आपका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जाएँ मगरिब पढ़ने और आप 3 की जगह 4 फ़र्ज पढ़ दें, तो आपका एक भी काउंट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि 3 काउंट हो जाएंगे और 1 रात हो जाएगा, नहीं, एक भी आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि आपने सुन्नत पे अमल नहीं किया। तो इसलिए हमें बचना चाहिए और अपने अंदर जानते रहना चाहिए और इखलास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और इखलास जो है वो पैदा करने के लिए मैं एंड पे यही बोलता हूँ कि इखलास पैदा करने के लिए जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, आपको अमल में, आपको अपना अमल बार बार करना पड़ता है, आपको इल्म हासिल करना पड़ता है और आपको गुनाहों से बचना पड़ता है, ठीक है। और ये कुछ टिप्स हैं इखलास पैदा करने के लिए। तो इसके साथ ही मैं एंड करता हूँ, अगेन जस्टिस नहीं हो सका इस हदीस के साथ, बट जो भी है जितने थोड़े से टाइम में जितना मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।